सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नवे संस्करण के दूसरे वीडियो एपिसोड में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, तो आज इसी विषय पर हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर जी एस राजपूत कार्यक्रम में अपने विचारों के साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आकर के अच्छा लग रहा है
जी। जब एक राष्ट्र प्रमुख विद्यार्थियों के साथ उनकी परीक्षाओं को लेकर और उनको टिप्स के साथ या उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने का अलग अलग तरह से संदेश देता है, उनके साथ संवाद करता है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी पहल है जो हम बीते 9 वर्षों से देख रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने संवाद में न केवल विद्यार्थियों को परीक्षाओं के तनाव को कम करने को लेकर टिप्स दिए, बल्कि देश के विकास में वो अपना कैसे योगदान दे सकते हैं इस बारे में भी उनके साथ सीधा संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य सुनते हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने और कैसे अपने मन से परीक्षाओं के डर या तनाव को हटाएं। तो आइए सुनते हैं।
एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को आपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी, अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है।
डॉक्टर राजपूत, जैसे प्रधानमंत्री ने एक एथलीट से, एक खिलाड़ी से एक विद्यार्थी की तुलना की, बताया कि कैसे अपने मन से अपने तनाव को, हम परीक्षा के तनाव को दूर कर सकते हैं, कैसे आप देखते हैं आजकल के इस दौर में बोझ हम कैसे हल्का कर सकते हैं, कैसे विद्यार्थी परीक्षा में बिना तनाव के जा सकता है, और प्रधानमंत्री की ये टिप्स कैसे उन्हें मदद दे सकती है?
पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब देश का प्रधानमंत्री बच्चों की परीक्षा पर चिंतन करता है, उससे संवाद करता है, तो इससे भी उनका तनाव कम होता है। उन्हें लगता है कोई तो हमारे साथ है, जो माता पिता बच्चों को देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वो भी तनाव कम करते हैं। तनाव कम करने के अनेक प्रकार के रास्ते हैं, जैसे बस्ते का बोझ कम करने की प्रक्रिया में मेरे जैसे लोगों ने भी भाग लिया था जब मैं एनसीईआरटी में काम करता था, कि किसी प्रकार से बच्चों का तनाव कम किया जाए। दूसरा, परीक्षा में सफलता को लेकर के अध्यापक उनको बहुत कुछ समझा सकता है और समझाते भी हैं और उनसे ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी भी ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे साल भर जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, थोड़ा समय दे तब भी ध्यान से पढ़े और बार बार अभ्यास करें। जो उन्होंने एथलीट के बारे में कहा कि गिरता है, पड़ता है, मगर फिर प्रयास में कमी नहीं करता। हमारे बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हो जाते हैं, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं होते। इसलिए कभी भी हतोत्साहित होकर के परीक्षा भवन में नहीं जाना चाहिए और जो भी पढ़ा जाए उसको बार बार सोचा जाए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ जो हर बच्चे के लिए उपयोगी होगी, कि जब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, तो उसके 4 अंश होते हैं। पहला होता है अध्ययन, हमने किताब से पढ़ा, कक्षा में पढ़ा, अध्यापक ने पढ़ाया। दूसरा होता है कि जो पढ़ा है कक्षा में उस पर मनन करिए, सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आपके मन में प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढेंगे। तो तीसरी स्टेज ये होती है चिंतन, आपस में बातचीत करिए कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में आया क्या, इसको पीयर लर्निंग भी कह सकते हैं। और चौथा होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका उपयोग क्या होगा, उसे जानना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे इन 4 हिस्सों में तो निश्चित रूप से हमारे तनाव बच्चों में कम होंगे,
निश्चित तौर पर। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने आज विद्यार्थियों के साथ संवाद में कही कि हमें एक उद्यमी मस्तिष्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हम विद्यार्थी ही क्यों ना हो, अपना एक पेयर ग्रुप बनाकर जो भी हमारी कुशलता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा से हम अपना कोई स्टार्टअप, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपना इनोवेशन शुरू कर सकते हैं। तो नवाचार के बारे में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को क्या सलाह दी, हम पहले सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है।
डॉक्टर राजपूत, जैसा कि प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप शुरू करने की बात कही, सलाह दी, हम सभी देखते हैं कि पारंपरिक और सुरक्षित करियर हमारे मन में रहता है, हमारे जहन में रहता है आगे बढ़ने की, इस तरह से हम लोग अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक अलग ट्रैक पर विद्यार्थियों को चलने के लिए कह रहे हैं कि अपने मन में पहले से ही एक व्यवहारिक कौशल के साथ आप आगे बढ़ें और पेयर लर्निंग, पेयर ग्रुप बनाकर अपना कोई स्टार्टअप बनाएं। कैसे ये एक आगे आने वाले समय में शिक्षा की नई दिशा को तय करने की एक सलाह है कि विद्यार्थी पारंपरिक किसी करियर को छोड़कर जिसमें वो कुशल है, प्रतिभावान है, उसको अपना रास्ता बनाएं।
देखिए, प्रधानमंत्री की यह बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने देश में माता पिता में और विद्यार्थियों में एक दृष्टिकोण परिवर्तन प्राप्त कर लिया। ये लगभग असंभव था। आज से 15 साल पहले कोई बात नहीं करता, आज विद्यार्थी सोचने लगा है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पड़ोस के किसी ने किया है, मेरे स्कूल के बाकी पहले वाले बच्चों ने किया है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा आधार है। हम सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं। गुरुदेव टैगोर का स्कूल के बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी है। गुरुदेव ने लिखा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर उसे दो वरदान देता है, प्रकृति देती है या ईश्वर देता है, जैसे पावर ऑफ आइडियाज, विचारों की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन, संकल्पना की शक्ति। और उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति इसको हमेशा कुंद करती रहती है, इम्पीड करती है। अगर हम बच्चे के आइडियाज और इनोवेशंस को इनकरेज करते रहे, चाहे वो कक्षा 3 में हो, चाहे कक्षा 6 में हो, चाहे कक्षा 12 में हो, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो इनोवेशंस तो बड़ी संख्या में आएंगे। बच्चे के अंदर जो संकल्पनाएं आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको बढ़ना चाहिए। माता पिता को भी, कई बार माता पिता कहते हैं ये प्रश्न मत पूछो, मेरा टाइम खराब मत करो। बच्चे की हर जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का समाधान करना चाहिए। खुद नहीं मालूम हो तो मिलकर ढूंढना चाहिए, नहीं किसी तीसरे के पास जाना चाहिए। अगर आप आइडियाज, इमेजिनेशन और उसके साथ सृजनात्मकता और जिज्ञासा, ये चार चीजें बच्चे की बढ़ाते रहें, चाहे पढ़ा रहे आप कुछ भी रहे हो, इतिहास पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो, जो भी हो, ध्यान में अध्यापक ये रखे कि मुझे इसके विचारों को आगे बढ़ाना है, इसकी संकल्पना शक्ति को कमजोर नहीं करना है, इसकी सृजनात्मकता का विकास करना है, और इसकी जिज्ञासा को, जिज्ञासा से ही इनोवेशन होता है। और ये चार शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और इधर बच्चों की चर्चा में आए हुए हैं। मेरे जैसे अध्यापक भी इनका उपयोग करते हैं, नई शिक्षा नीति में भी इन विचार किया जाता है,
बिल्कुल,
और अध्यापकों के प्रशिक्षण में भी उपयोग हो रहा है। इसके बाद इनोवेशन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बता रहे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब बनी, ये प्रधानमंत्री जी का विचार है, और वहां पर कोई भी प्रयोग बच्चा कर सकता है, अपने विचार को ट्राई कर सकता है। यही इनोवेशंस को बढ़ाने का तरीका है और हम सबको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश में ये बात स्वीकार की गई।
एक महत्वपूर्ण बात पर आपकी राय या प्रतिक्रिया भी मैं लेना चाहूंगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल दौर में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी विद्यार्थियों को सलाह दी कि हम तकनीक का गुलाम न बने बल्कि उसे अपने सहज इस्तेमाल की तरह से उसका हम फायदा उठाएं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य में जो डिजिटल क्रांति है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कैसे अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, और विद्यार्थी या जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अभिभावक हैं, वो कैसे इस तकनीक को एक सकारात्मक तरीके से विद्यार्थियों के जीवन में उतार सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
20वीं शताब्दी में बहुत से आविष्कार हुए, बहुत से नई नई चीजें आई, हम लोग उसको कहते थे कि तो बहुत बड़ा समय है। अब क्या है, अगर 20वीं सदी परिवर्तन की सदी थी तो 21वीं सदी परिवर्तन की गति की सदी है। आप नहीं जानते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो 6 महीने बाद क्या क्या आपको और दे सकता है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, और बड़ी तेजी से हो रहा है। जो नया आविष्कार होता है फौरन लोगों तक पहुंच जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि जो नई तकनीक आ रही है उसमें हम बहुत चीजों का ध्यान रखें। जैसे ऑनलाइन लर्निंग की बात है, घर में बैठकर काम करने की बात है, इनमें बड़े फायदे हैं, समय बचता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो आमने सामने बैठकर बातें होती हैं वे भी मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग है। अतः किसी भी नए आविष्कार को, किसी भी टेक्निक को पूरी तरह से स्वीकार करने के पहले उसके प्रोज और कॉन्स देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर ये हमें इतने फायदे दे रहा है तो कहीं नुकसान तो नहीं दे रहा। सबसे बड़ा उदाहरण तो एटॉमिक बम का है। जब एटम का एक्सप्लोजन लॉस अलामोस में पहली बार किया गया था तो वैज्ञानिक सोच रहे थे कि कितना अच्छा साधन मिल गया है, ऊर्जा की कमियां समाप्त हो जाएंगी, बहुत से पॉजिटिव होंगे, लेकिन हुआ क्या, उसका दुरुपयोग हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी उससे लोग आक्रांत हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात आ गई। तो विज्ञान के जितने भी समय हैं, चाहे एआई की बात हो, जीपीटी जो भी बात है, सब में ये विचार करना पड़ेगा, किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके प्लस और माइनस समाज को, अध्यापकों को, वैज्ञानिकों को और जो हमारे विद्वान लोग हैं उन्हें देखकर ही उसका निर्णय करना चाहिए कि हम कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते।
इसीलिए एथिकल यूज ऑफ एआई की आजकल बात हो रही है कि नैतिक तौर पर हम उसका सही इस्तेमाल कैसे करें।
बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। जैसे हमारे पास मोबाइल है, अब सर्व सुलभ हो गया है, ये बहुत अच्छी चीज है, समाज में सब लोग जुड़ गए हैं, कितने फायदे हैं, अनेकों फायदे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है और भी अनेक प्रकार के निगेटिव्स उसमें आ रहे हैं। इसलिए ये समाज को अलर्ट होना चाहिए नई किसी भी चीज को लेने के लिए। ये भी सही है, देखिए हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में ये नीति बनी है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहती है कि हमें नए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, नए ज्ञान के सृजन में बराबर की भागीदारी करनी चाहिए, हमें भी नया ज्ञान सृजन करना चाहिए।
बिल्कुल,
हमें नया ज्ञान और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम विज्ञान में, तकनीकी में, नए आविष्कारों में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं, और हमारे जिन लोगों ने संस्थाएं बनाई ये उनका योगदान है, आज भी हमारी संस्थाएं बन रही। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य के वैज्ञानिक तो वही है, भविष्य के नेता वही है, वहीं से सब कुछ आने वाला है।
बिल्कुल,
इसलिए सबसे बड़ी धरोहर हमारे बच्चे ही है।
तो भविष्य के नेता और वैज्ञानिक की आपने बात कही, तो प्रधानमंत्री ने भी अपने एक वक्तव्य में इस पर जोर दिया कि जब विकसित भारत होगा तो उस वक्त जो आज की पीढ़ी होगी वो नेतृत्व ले रही होगी और एक बहुत बड़ा वाहक होगी जो उस वक्त आज के विद्यार्थी हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अगर हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तो हम विकसित भारत की एक नींव डालते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा एक छात्रा के सवाल के जवाब में विकसित भारत में विद्यार्थियों की भूमिका को लेकर पहले हम सुनते हैं फिर चर्चा करते हैं।
मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th-12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा, सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। लिक्वान यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है भाई, यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए।
बड़ी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। एक उत्तरदायित्व से भरे नागरिक के तौर पर कैसे हमें अपने आप के, अपने चरित्र को विकसित करना है जो विकसित भारत के लिए हमारे लिए एक रास्ता तैयार करेगा, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की इस अपील?
देखिए विकसित भारत की जो संकल्पना या लक्ष्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्धारित किया गया है वह स्वयं ही बच्चों को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। हर बच्चे को लगता है कि मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। प्रधानमंत्री अभी जो बातें आपने सुनाई है वे छोटी नहीं है, अगर वे बच्चों के मानस में बैठ जाएं, और मैंने देखा है स्कूल के बच्चे बड़े कॉन्शियस हैं,
बिल्कुल
सीख रहे हैं, तो हमारे देश का जो सामाजिक परिदृश्य वो बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत सी कठिनाइयां जो लोगों को है वो समाप्त हो जाएंगी और एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं और मैं जो कुछ कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। मैं जापान का उदाहरण दे सकता हूं विस्तार से कि उन्होंने जब अपना पुनर्निर्माण प्रारंभ किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उन्होंने यही सिखाया था कि जो भी करो देश के लिए करो और ये मानकर चलो कि तुम देश के भविष्य में हिस्सेदारी कर रहे हो। जैसे मैं एक अध्यापक रहा हूं और मैं मानता हूं कि भारत के भविष्य के निर्माण में मैंने भागीदारी की है, मैंने बहुत लोगों को रास्ता दिखाया है, बहुतों को पढ़ाया है और बहुतों के जीवन को दिशा दी है। हर अध्यापक के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं भी विकसित भारत के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री को अवश्य अच्छा लगे कि मेरा देश, मेरे देश के अध्यापक कितनी ही कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हो मगर वे देश को आगे बढ़ाने में ऐसी पीढ़ी तैयार कर रही है जो अपने ऋषि ऋण, दैव ऋण और पितृऋण तीनों ऋणों को निभा रही है। और इसमें सारा कुछ शामिल है, हमारा सामाजिक प्रदेश शामिल है, हमारा वैज्ञानिक शामिल है, हमारा ज्ञान पर शामिल है और समाज के प्रति हमारी निष्ठा और संकल्पना और समर्पित होना भी शामिल है।
जी, तो इसी अंतिम वक्तव्य के साथ, विचार के साथ हम यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी एस राजपूत, आप कार्यक्रम में शामिल
हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, आपने मुझे बुलाया और मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा।
धन्यवाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में